بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں, اس وقت کی یہ مجلس آپ کے اس مدرسہ مدینۃ العلوم کی نسبت پر یہاں منعقد کی گئی ہے کہ تعلیم و تربیت کی اہمیت آپ کے سامنے پیش کی جائے. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے تعلیم و تربیت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے باقاعدہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے. حالانکہ یہ چیز تو وہ تھی جو ہر مسلمان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے تھی. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اسلام میں خلافت راشدہ کے بعد سب سے پہلی جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ خاندان بنو امیہ کی. یہ بنو امیہ کا خاندان گویا حکومت پر آیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بعد اسے وہ خلفائے بنو امیہ نے حکومت کی, اور اس کے بعد جو خاندان حکومت پر آیا وہ خاندان بنو عباس ہے. خاندان بنو عباس کا سب سے پہلا حکمران ابو العباس صفاح, اس کا لقب ہی تھا صفاح. عربی زبان میں صفاح کہتے ہیں بہت زیادہ خون بہانے والا. بنو امیہ کے خاندان سے جب حکومت لی گئی ہے تو آپ تو جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک خاندان سے جب حکومت لی جاتی ہے دوسرے خاندان میں جاتی ہے تو ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا قتل ہوا کرتا ہے, بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے, اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو خاندان بنو امیہ کے پاس سے جب حکومت لی ہے خاندان بنو عباس نے تو وہ تو ایک پڑھنے جیسی تاریخ ہے, بڑا لمبا واقعہ ہے. لیکن اس موقع پر خاندان بنو امیہ کے بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا, اور قتل کے بعد بہت سی بڑی تعداد وہ تھی جن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد یہ جب یہ حکومت پر آئے ہیں اب بنو عباس, اور یہ ابو العباس صفاح اس نے جو ہے وہ بے شمار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بے شمار لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, اور یہ جیل میں ڈالے گئے جو لوگ تھے وہ جیلوں ہی میں پڑے رہے, یہاں تک کہ ابو جعفر منصور نے اپنے دور خلافت میں جب اس کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اب بنو عباس کی حکومت کے مقابلے پر کوئی اٹھنے والا باقی, اب کوئی ایسا شخص جو بنو امیہ کے خاندان سے حکومت کا اور خلافت کا دعویٰ کر کے اٹھے اور مقابلے پر آئے نہیں رہا, تو پورا اطمینان ہو گیا. تو جو لوگ جیلوں میں تھے ان کو جیلوں سے رہا کیا گیا, بڑی تعداد تھی جو جیلوں میں تھی. جب وہ جیلوں سے رہا ہوئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک طبعی اور نفسیاتی چیز ہے کہ جس خاندان کے اندر حکومت ہوتی ہے اس کی پوری کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ حکومت ہمارے خاندان سے نکلنے نہ پائے. حکومت کی وجہ سے بہت سارے फवाइद होते हैं जो उनको हासिल होते हैं, खानदान का हर फर्द उससे फायदा हासिल कर रहा होता है। तो बहरहाल ये कोशिश उस खानदान की होती है। तो खानदान बनु उमैया से जब हुकूमत निकल कर बनु अब्बास के पास गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, और ये सारे बेशुमार आदमी कत्ल किए गए, बेशुमार आदमी जेलों में डाले गए। लेकिन जेल से जब रिहा किए गए और उन जेल से रिहा होने वालों से ये सवाल किया गया कि इतने साल तुम लोग जेलों में बंद रहे और अब रिहाई का मौका मिला है, तो इतने साल जेलों में रहने के जमाने में तुम्हारे ऊपर क्या, मतलब तुम्हारे जज्बात क्या हैं? तो वो ये नहीं कहते कि हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे खानदान से हुकूमत चली गई, बल्कि वही कहते हैं जितने साल हम जेलों में रहे अपने बाल बच्चों और अपने औलाद से दूर रहने की वजह से उनकी तरबियत का हमें मौका नहीं मिला, उसका हमें अफसोस है। देखिए उनको जो अफसोस था वो ये था कि हम जेल में रहने की वजह से अपने औलाद की तरबियत का हमें मौका नहीं। आज हम घरों में मौजूद है, औलाद हमारी हमारे पास है, लेकिन बाप का मामला अपने औलाद के साथ तालीम और तरबियत के मामले में ऐसा है जैसे जानता ही नहीं बाप के इसके इस लाइन से भी मेरी कोई जिम्मेदारी है और मुझे कुछ करना चाहिए। वाकया यह है कि ये हमारे असलाफ थे कि उनके नजदीक हुकूमत से ज्यादा कीमती थी ये तालीम और तरबियत जिसका उन्होंने अपने इन अल्फाज में इजहार किया। और आज हमारी निगाहों में दुनिया इतनी कीमती बन गई कि बाप घर में मौजूद है और उसको अपने औलाद की तरबियत की फिक्र नहीं। लैस अल यतीमु यतीमुल क्या है वह इन्नमल यतीमु यतीमुल इल्म वल अदब, कि जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो वो यतीम नहीं है, जो इल्म और अदब से महरूम रहा हो वो यतीम है। आज हम घरों में मौजूद हैं और हमारी औलाद इल्म और अदब से महरूम है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबरक तआला ने बड़ी ताकीद फरमाई, मैं वो ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, चंद आयतों और हदीसों का तर्जमा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली आयत हजरत शेखुल हदीस साहब ने भी पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर के लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ, व कूदूहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ऐंधन इंसान है और पत्थर, यानी दुनिया की आग का ऐंधन तो लकड़ियां हुआ करती है लेकिन जहन्नम की आग का ऐंधन जो है इंसान होंगे और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, कोई आदमी यूं समझता हो कि हम वहां से निकलकर भागकर अपने आप को बचा ले जाएंगे, का नहीं, वहां पर निगरानी के लिए मुकर्रर है ऐसे फरिश्ते जो बड़े सख्त दिल और बड़े मुतशद्दिद हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, कि वो अल्लाह के हुक्म की जरा बराबर भी नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं। वो यहाँ यूं सबक तो कुछ दे दिला के भी मामला निपटाएंगे, वहां दे दिला के नहीं निमटने वाला है। तो महाराज कहने का हासिल यह है कि ये आयत जो है इसमें जिस आग से डराया गया है और उससे बचने का हुक्म दिया गया उसका उसकी तदबीर क्या, तो हजरात सहाबा से इस आयत की जो तफसीर मनकूली है वो उसका खुलासा यह है कि हर मुसलमान को चाहिए कि शरीयत के अवामिर, देखो शरीयत के जितने भी अहकाम हैं बुनियादी तौर पर उसके दो हिस्से किए गए हैं। कुछ अहकाम वो है जिनको करने का हुक्म दिया गया है, उनको अवामिर कहते हैं। कुछ चीज़ें वो हैं जिनसे बचने का हुक्म दिया गया है, उसको नवाही से ताबीर किया जाता है। तो जो करने की चीज़ें हैं उनका आदमी इल्म हासिल करे, इल्म हासिल करने के बाद खुद उस पर अमल का एहतमाम करे। बचने की चीज़ें हैं उनका इल्म हासिल करे और इल्म हासिल करने के बाद उनसे बचने का एहतमाम करे। इसी तरह करने की जो चीज़ें हैं उनको अपने बच्चों को उनसे वाकिफ, उनका इल्म अपने बच्चों को भी सिखाए और फिर अपने बच्चों को उस पर अमल का आदि बनाए। ये सिखाना ये तालीम और अमल का आदि बनाना ये क्या है, तरबियत। आप दुकान पर ले जाएंगे ना बच्चे को बताएंगे ग्राहक आएगा तो यूं बात करने की और यूं करने का और फलाना करने का, ये सब जो होता है ना ये सब तालीम है। और फिर अमली तौर पर आप अपनी निगरानी में यूं, अब मैं बैठा हूं जरा तुम ग्राहक के साथ बात करो तो मैं देखता हूं तुम कैसी बात करते हो, कैसा उसको ये करती हो, मामला करती हो। तो बाकायदा कई बार बार उसके पास ये काम करवा कर इस काम का इसको जो आदि और बनाया जाता है, इसी का नाम तरबियत, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे डॉक्टर की एक तालीम होती है, खाली तालीम पाने पर जो है उसको डिग्री नहीं दी जाती जब तक के बाकायदा वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो बहरहाल ये अवामिर शरा शरीयत के नमाज रोजा और जितने भी करने के काम है उन तमाम की तालीम यानी उनसे वाकिफ भी कराए और उन पर अमल की आदत भी डाले। इसी तरह बचने के जो काम है उनकी उनसे वाकिफ भी करे, ये तालीम हुई, और उसको उनसे बचने का आदि बाकायदा अपनी निगरानी। मसलन नमाज है तो नमाज क्या है, नमाज की सारी तफसील कि भाई नमाज की ये फराइज वाजिबात, इसके पढ़ने का ये तरीका, ये तो तालीम हुई। और नमाज का आदि बनाना, खुद जब नमाज के लिए जावे ना तो शरीयत ये कहती है बच्चा जब 7 साल का हो तो मुरु औलादकुम बिसलाते इदा बलगू सबान, कि जब 7 साल के हो तो नमाज का हुक्म का अपने साथ चलो बेटा, मैं नमाज के लिए मस्जिद में जा रहा, तुम भी चलो अपने साथ मस्जिद में ले आओ। और सिखाया तो था, आप देखो मस्जिद में आकर के कि मैंने जो तरीका बताया है उसके मुताबिक वो नमाज पढ़ता है कि नहीं। इस तरह रोजाना 5 वक्त 7, 8, 9, 10 साल तक, और 10वें साल ना आने पर पिटाई का हुक्म दिया। बोला कई साल तक अपने साथ मस्जिद में लाते ले जाते रहो, यहां तक कि आपको ये इत्मीनान हो जाए कि अब इसको नमाज की ऐसी आदत पड़ गई कि अब मैं हूं या न रहूं बहरहाल इसको नमाज पढ़े बगैर चैन आएगा। ये है क्या तरबियत। अब मामला तो हमारा ये है कि हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ते, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, खुद ही नमाज नहीं जानते, बच्चों को क्या वाकिफ करेंगे। यही हाल है बचने की चीजों का, गुनाह के काम खुद ही नहीं जानते कि गुनाह के काम क्या है, खुद ही बचने का एहतमाम नहीं। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, हमारे बुजुर्गों ने जो है मुसलमान बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ये मकातिब के सिलसिले जारी किए। ये मकतब में जो कुछ हो रहा है ये तो आप पर, ये सब आपको करना था, अल्लाह ताला ने ये सब आप पर लाजिम किया है। इन मकतब वालों का एहसान मानिए कि आपकी जिम्मेदारी को आपकी तरफ से ये अदा कर रहे हैं, अब इन चीजों से वाकिफ भी कर रहे हैं और अपनी मकदूर भर अपनी हैसियत के मुताबिक ताकत के मुताबिक उसकी आदत भी डाल। लेकिन पूरी आदत तो उसी वक्त तो पड़ेगी जब आप भी उसकी तरफ क्या करेंगे। तो मसलन आपके इस मकतब में खाने के आदाब उस्ताद सिखाएगा, खाने के आदाब, हाथ धो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, इस तरह बैठो, सब कुछ कराएगा, लेकिन खाना यहाँ तो खाता नहीं, खाना तो कहाँ खाएगा, घर में। तो जब खाना घर में खाएगा तो वहां कौन उसकी निगरानी करेगा, वो तो आप बाप को ही देखना पड़ेगा कि उसको जो चीजें बतलाई गई हैं उसके मुताबिक खाना खा रहा है या नहीं। तो अब वह जब तक कि आपका इसमें तआवुन नहीं होगा, आप इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, वहां तक मकतब की इस तालीम का फायदा जैसा होना चाहिए वो होगा नहीं। ऐसे ही नमाज का तरीका यहाँ बतलाया गया, जो बच्चे इस मदरसे की करीब की इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं बहुत बहुत साधेदाबाद में तबाही के भाई तुम भी आओ नमाज, लेकिन सारे बच्चे तो यहाँ नहीं है, बहुत से बच्चे हैं दूसरे मोहल्लों से आते हैं वहां रहते हैं, तो अब उनकी नमाज की निगरानी उस्ताद तो नहीं करेंगे। ये जो निगरानी कर रहे हैं वो भी उनका एहसान है, वो चाहते हैं कि बच्चा नमाज का आदि बन जाए, तो अब उनकी निगरानी तो आपको करनी है। तो कहने का हासिल ये है कि ये सारी चीजों को बतलाना, वाकिफ करना और उसके मुताबिक अमल की आदत डालना। तो वाकिफ करने का नाम तालीम और अमल की आदत डाली गई, बचने की आदत डाली गई बचने की चीजों से, इसका नाम क्या है तरबियत। ये दोनों चीजें जरूरी है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है हजरत सहाबा इब्न उमर और इब्न अब्बास और दीगर हजरात से, इसकी जो तशरीह तफसीर मनकूल है उसका खुलासा यही है। इसलिए ये आपका फरीजा है, आप अकाइद के मामले में और इसी तरीके से अवामी के सिलसिले में अपने बच्चों को वाकिफ, ये मदरसे में ये चीज सिखलाई जा रही है। जो चीज दीनी एतबार से अभी जैसा कि बतलाया, जो एक मुसलमान के लिए जिन चीजों का सीखना करना जरूरी है, फर्ज आयन है, उन तमाम चीजों की तालीम हमारे इस मकतब में दी जाती है। इसी को कुरान में ताकीद और इसी को अल्लाह के इबादुर रहमान सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह ताला ने रहमान के बंदों की मखसूस सिफात बयान की है, उन सिफात में से एक सिफात ये भी है व والذین یقولون, جو اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا, کہ ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیا آنکھوں کی ٹھنڈک؟ بخاری شریف میں غالباً قتادہ جو تابعین ہیں ان سے یہ منقول ہے کہ آدمی جب اپنی اولاد کو اللہ کے حکم پر چلنے والا دیکھتا ہے نا, تو آدمی اس کو دیکھ کر کے اس کی آنکھیں, آدمی جب دیکھتا ہے میرا بیٹا نمازی ہے, میرا بیٹا روزہ رکھ رہا ہے, میرا بیٹا اچھے اخلاق سیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق لوگوں سے پیش آ رہا ہے, تو اس کی یہ چیزیں دیکھ کر ماں باپ کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹھنڈی ہوتی ہیں. اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت کرنے والا دیکھ کر ماں باپ کو خوشی ہوتی. اسی کو کہا گیا کہ ہماری اولاد اور گھر والوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما. وجعلنا للمتقین امام, اور اللہ تو ہم کو نیک لوگوں کا سردار, باس اور لیڈر بنا. نیک لوگ کون؟ یہ جو ہماری اولاد ہے, ہم باس اس کے ہیں. ہر باپ ہر گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کے افراد کا کیا ہے؟ باس ہے, امام ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اب اگر یہ نیک بنیں گے تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل باس بننے کی دعا نہیں کی جا رہی ہے, اصل تو دعا یہ کی جا رہی ہے کہ یہ نیک ہو, ان نیک لوگوں کی سرداری ہمیں حاصل ہو. تو نیک لوگوں کی سرداری تو اس وقت ملے گی جب یہ کیا بنیں گے؟ نیک بنیں گے. تو نیک تو پیدا تو ہوئے نہیں ماں کے پیٹ سے, اس طرح ہمیں نیک بنانے کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ محنت کرنی پڑے گی. ہم تو کوئی توجہ کریں نہیں, ایسے ہی چھوڑ دیں, گھر سے کہاں جا رہے ہیں, کب آ رہے ہیں, کس کی صحبت میں دن گزار رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, ان کے پاس کیا ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو یہ اس طرح تو نیک نہیں بنیں گے. نیک بنانے کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی. مجھے ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنے والد کا, حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب, یہ فضائل کی کتابیں جن کی ہے, ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے حضرت شیخ کی کیسے تربیت کی تھی, کیسی سخت وہ تفصیل لکھی ہے. میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں, ایک مرتبہ میں سہارنپور گیا تھا تو مولانا طلحہ صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ وہاں جو لوگ سہارنپور میں پڑھے جانتے ہیں, مظاہر المدرسہ جو ہے اس کی کئی عمارتیں, ایک پہلی عمارت جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب ہے, کتب خانے کے قریب, وہ دفتر والا مدرسہ قدیم کہلاتا ہے. تو وہاں کا وہاں طلحہ صاحب نے مجھے اوپر کی چھت, جو پہلے وہاں پہلے مہمان خانہ تھا, کہا جب حضرت شیخ چھوٹے تھے وہ ہمیشہ آپ کے والد اپنے ساتھ رکھتے تھے, گھر جانے کا جب وقت آتا تھا گھر جانے کے لیے, تو وہاں سے حضرت کا گھر جو ہے اتنا ہی ہے, جب آپ یہاں سے نکلیں گے اور تھوڑی سی یہ گلی پار کرنے اتنا ہی دور ہے, چند قدم. تو کہا جب یہ مدرسے کے دروازے سے نکلتے تھے تو والد صاحب اوپر کھڑے رہ کر دیکھتے تھے کہ نکلے وہاں سے لے کر گھر کی گلی میں داخل ہوئے وہاں تک کسی سے بات تو نہیں کی. کتنا زیادہ ان کا گویا پہنچ تھا, پہرا تھا, اتنی اہمیت. آج تو ہم نے اپنی اولاد کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے, کہاں کس سے مل رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, کس کی صحبت اٹھا رہی ہے, ہمیں کچھ معلوم نہیں. وہ جو پانی سر سے گزر جاتا ہے اور ان کی طرف سے ان کی بد اخلاقیوں اور ان کے جو ہے بدعمالیوں اور ان کے گناہوں کے نتیجے میں ہم پر جب مصیبتیں آتی ہیں تب آنکھیں کھلتی ہیں, تو یہ طریقہ نہیں ہے تربیت کا. میں کہا کرتا ہوں کہ دیہاتوں میں آدمی دیکھتے ہوں گے, دیہاتوں میں عورتیں بھینسیں پالتی ہیں, دیہات کی عورتیں بھینسیں پالتی ہیں. اب وہ بھینس جب دودھ دے رہی ہوتی ہے نا, اس بھینس کی عادت ہوتی ہے, وہ جس کو دودھ دیتے ہیں اسی کو دے گی, وہ دوسرا کا ہاتھ لگانے نہیں دے گی. تو اب دودھ دینے کے زمانے میں گھر میں خاندان میں کوئی شادی ہے جو دوسرے گاؤں میں ہے, وہاں سے دور ہے, گھر کے سب لوگ جائیں گے, لیکن وہ عورت جو ہے نا جو بھینس کی ذمہ دار ہے وہ جائے گی نہیں, وہ یوں کہے گی میں جاؤں گی تو یہ بھینس جو ہے دودھ دینا کیا کر دے گی. ایک عورت اپنی بھینس کے لیے اتنی قربانی دے رہی ہے, اور آج ہم اپنے اولاد کے لیے اپنے جو ہے خواہشات کو, آج باپ اپنے دوستوں کے ساتھ کلب میں بیٹھنے کے لیے جاتا ہے, ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, سارے اوقات ملتے ہیں, اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو اپنی اولاد کے پاس بیٹھنے کا وقت. اولاد جو ہے نا وہ بے چین ہے, میرا باپ مجھ سے کبھی پوچھتا نہیں کہ تیری کیا تکلیف ہے. یہ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں جس طرح ان کو مانوس کرنا چاہیے, ان کی تربیت کی طرف حصہ لینا چاہیے, آج نہیں رہا. آج ہم نے سب اور ایسے اسکولوں کے اندر بھی یہ کیا, اسکولوں کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے इतनी रकमें खर्च की जा रही है। आज वहां स्कूल की तालीम के लिए उसको इतनी अहमियत, बच्चियों तक को वहां भेजा जा रहा। हालांकि मैं हमेशा अपने मुसलमान भाइयों को कहता हूँ कि हमारे गैर मुस्लिम जो है वो तो अपनी लड़कियों को इसलिए तालीम देते हैं कि उनकी निगाहों में यह है कि लड़कियों से भी कमवाना है, यानी गोया उनसे नौकरी करवानी। मुसलमान का ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद वो है जिनके दिल में ये ख्याल नहीं होता कि मैं अपनी लड़की को कहीं नौकरी करवाऊंगा। उसका अगर पढ़वाता भी दुनियावी तालीम देता है तो भी अंदर ये जज्बा नहीं होता, तो वो तो इसलिए तालीम दिलवाते हैं, इस तालीम पर जो खर्च करते हैं उनको वसूल करना है, हमें तो उसकी जरूरत नहीं। बकदर जरूरत तालीम दे दी बस खलास हो गया, उनके अखलाक को क्यों बर्बाद किया जाए। आज नतीजा ये होता है कि घर के घर उसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं और इस तालीम पर इतना खर्चा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसको ले जाने लाने वाला रक्षा वाला है उसका भी तयशुदा है, तो जो तीन या चार पांच हफ्ते का यानी सवा डेढ़ महीने का वैकेशन होता है उसमें भी वो अपना किराया क्या करेगा, वसूल करेगा, है ना, और देते हैं। ये अजीब मामला है, वो ले रहा, और यहाँ मदरसे का मामला आएगा, मकतब का, तो वहां आदमी आकर के बस वहां स्टॉप हो जाए, वहां दो पैसे खर्च करने के, आप उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसका उसका जी खुश करने के लिए साल भर में कई कई उसको जूतियां जोड़ियां जूते के जोड़ियां दिलवाते हैं, ये जूता नहीं, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, कपड़े दिलवाते हैं, तो उसकी जाहिर जेब ज़ीनत का इतना अहतमाम करते हैं और उसके बातिन के अखलाक को दुरुस्त करने के लिए हमें पैसा खर्च करने की तौफीक नहीं होती। मैं तो कहा करता हूँ कल को जब अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा, नामा अमल पेश होगा, और आपने अपनी औलाद के लिए क्या खर्चा किया, उस खर्चे में खिलाने के लिए ये, पहनाने के लिए ये, उसके मकान के लिए ये, उसकी सैर तफरी के लिए ये, उसकी स्कूल और उसकी कॉलेज के लिए इतनी मिकदार, और मदरसे के लिए कितना खर्चा किया, वो जब वहां आएगा ना तो उस वक्त आपको पता चलेगा। और अल्लाह ताला की तरफ से पूछा, अच्छा मेरा नाम सिखलाने के लिए और दीन सिखलाने के लिए तुमने इतने पैसे खर्च किए, उसका आप फीसद परसेंटेज देख लो, बाकी सारे खर्चे के मुकाबले में 5% भी नहीं होता। मैं तो अल्लाह वास्ते खर्च करो ताकि कल को अल्लाह को ये तो कह सकें कि अल्लाह अपने अपने औलाद की तालीम और तरबियत के लिए हमने ये पैसे खर्च किए थे। मैं हदीस में आता है कि आदमी मेहमान के लिए जो खर्च करता है ना, अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब देना नहीं पड़ेगा। हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह ने जगह पर लिखा है कि कोई अच्छा खाने का कभी जी भी चाहा तो अपने लिए नहीं, मेहमान आता है तो उस मौके पर वो अच्छा खाना बनवाता हूँ ताकि अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब न देना पड़े। तो मैं यूं कहा करता हूँ भाई, ये पैसे खर्च करो बच्चों के ऊपर तालीम, इस दीनी तालीम पर, ताकि वो दुनियावी तालीम में जो खर्च कर रहे हो वो भी उसमें दब जावे। तो बहरहाल जरूरत है, इसका एहतमाम होना चाहिए, हमें अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की तरफ खुसूसी तवज्जो। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, तुम में से हर आदमी निगरान और जिम्मेदार है, और उसके मातहत जो है घर का बड़ा जो है मर्द अपने घर का जिम्मेदार है। मातहतों के मुतालिक कयामत में पूछा जाएगा क्या सिखाया, उनकी क्या तरबियत की, अगर उसमें कोताही रही है तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। उस वक्त आपका ये जवाब कि मैंने उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए थे, आज औरतें भी आई हुई है, मैं उनसे कहूंगा आज औरतों ने क्या कर रखा है, औरतें लाड और प्यार में अपने बच्चों के अखलाक को बिगाड़ती हैं, उनकी तालीम और तरबियत की तरफ शौहर भी अगर तवज्जो कर रहा है तो उसकी राह में रोने अटकाएगी, इसके पर इतनी सख्ती मत करो। उस्ताद ने अगर दो जुमले कह दिए, अरे एक जगह पर तो खाली एक उस्ताद ने मुझे मेरे पास शिकायत पहुंची कि एक उस्ताद ने एक बच्चे को खाली इतना पूछ दिया, फला नमाज तूने क्यों नहीं पढ़ी, तो उसके बाप ने आकर बाकायदा मदरसे में आकर उस्ताद को तमाचा मारा। मैंने सुना तो मैंने कहा अल्लाह ये कौम कैसे फला पाएगी, ये कौम कैसे फला पाएगी, वो खुद तो कुछ नहीं करते दूसरे कर रहे हैं तो उनके साथ ही ये सुलूक किया जा रहा है, वहां कोई दूसरा कोई ऐसा मामला करता तो वहां जाके ये करने की, जहां हजारों रुपये खर्च करते हैं स्कूल में वहां कोई सख्ती होगी, वहां जाकर कोई शिकायत करने के लिए तैयार नहीं, और यहाँ ये सब हो रहा है। ये सब मजालिम जो ढाए जा रहे हैं और हमारी कौम की तरफ से ये हरकतें हो रही है, वाकई यह है कि ये बहुत ज्यादा तवज्जो के काबिल है, उसकी तरफ खास अहतमाम होना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान का जब इंतकाल हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, तीन चीज़ें बाकी रहती, उन्हें एक तो यह है कोई सदका जारिया कोई ऐसा नेकी का काम किया कि उसके मरने के बाद भी लोग फायदा उठाते हैं, मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दी, कुआं खुदवा दिया, कोई ऐसा काम, और दूसरा जो है कोई इल्म की चीज जारी कर दी, कोई लोगों को कोई बात सिखाई, उसने उसको सिखाई, ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। और वलद उन सालिह यदूला, या कोई नेक लड़का छोड़ा, तो लड़का नेक काय को कब बनेगा जबकि हम उसके ऊपर मेहनत करेंगे। ये भी वह आज के इसके बाकी जो चीज काम की है वो करने के लिए तैयार नहीं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहना दें, वंजन्ना अलैक लिबासन युवारी सवात उमरीशा, बारी ताला एहसान के तौर पर जिक्र करते हैं कि तुम्हारे लिए हमने उतारा आसमान से लिबास जो तुम्हारे सतर को छुपाता है, वरीशा और तुम्हारे जीनत का सामान भी है, वह लिबास तकवा दालिक खैर, और तकवे वाला लिबास असल तो यही खैर। तो आज तो हमारी औलाद का लिबास जो वो भी शरीयत के खिलाफ, ये जब से तैयार लिबास लेना शुरू किया तो ये गैरों ने जो है ऐसी फैशनें निकाली कि हमारी औलाद को जो है सुन्नत के मुताबिक या शरीयत के मुताबिक कोई लिबास पहनने का मिलता नहीं है बचपन के अंदर, न लड़कों को लड़की, और लड़कियों का मामला तो और ज्यादा संगीन। इसलिए इन सारी चीजों की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। अभी जैसा कि आपने सुना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि मान हला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफजल मिन अदबिन हसनी, कि कोई बाप अपनी औलाद को कुछ अगर हदिया देना चाहता है, कुछ भेंट देना चाहता है, तो अच्छे अदब से बढ़कर कोई हदिया नहीं, अच्छे आदाब से आरास्ता करो, वही बाकी रहने वाली चीज है। आज हमने दुनिया को ऐसा मकसूद बना लिया, बस पैसा पैसा पैसा, उसी को हासिल करने में खुद भी लगे हुए हैं और वही औलाद। हालांकि पैसे का हाल ये कि जब आप मरे, मरते ही वो दूसरों के हाथ में चला जाएगा, आपका नहीं रहेगा। औलाद को अगर तरबियत करेंगे, उनको अच्छे अखलाक सिखाएंगे, दुनिया में भी वो जो है आपकी खिदमत करेगी और आपके मरने के बाद भी आपके लिए दुआएं खैर करेगी, सारे सवाब करेगी। आज तो ये हो गया, बाद माँ बाप का हाल यहाँ तक है कि माँ बाप ने तो नहीं, औलाद अपने तौर पर किसी अल्लाह के नेक बंदे की सोहबत में जाती है और उसकी वजह से नेक बन रही है, वो भी माँ बाप को खलता है, बोया वो भी कही है मौलवी लोग हमारे बच्चों को बिगाड़े बिगाड़ के आ रहे हैं, शुक्र और एहसान अदा करो, इस काबिल बना रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या कर रहेंगे दुआ, तुम तो उनको ऐसा बना रहे हो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करने के और नमाज जनाजा पढ़ने के लिए भी काबिल है। हमारे एक दोस्त हैं, शागिर्द हैं अमेरिका में, कहते हैं हमारे एक मिलने वाले का इंतकाल हुआ, मैं जब जनाजे के लिए गया तो तीन नौजवानों को देखा कि वो अलग खड़े हैं, जनाजे की नमाज में शरीक नहीं हुए। कौन मालूम है? ये उसी मरने वाले के बच्चे। भाई तुम क्या, हमको आता ही नहीं, हम पाक भी नहीं और हमको नमाज पढ़ते ही नहीं आता। गोया बाप की जनाजे नमाजे जनाजे की नमाज पढ़ना भी, पढ़ने का हक भी उन्होंने अदा नहीं किया। हकीकत तो ये है कि आप अगर दुनिया के पीछे लगे रहेंगे तो यही सारी चीजें हैं। ये मकातिब का सिलसिला हमारे बुजुर्गों की बड़ी ऐसी देन है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारा ये इलाका, हम तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, अरब ममालिक में भी के हाल से भी वाकिफ है, इस्लामी ममालिक के हाल से भी वाकिफ है। हमारे इस इलाके में हमारे असलाफ और हमारे जो है पुराने बुजुर्गों की मेहनतों से मकातिब के ये सिलसिले जो जारी हैं, वो अल्लाह की ऐसी अजीब गरीब नेमत है कि हम और आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लामा इकबाल जैसा फलसफी और तारीख का माहिर, किसी ने ये मकातिब के मुतालिक पूछा तो जवाब में कहने लगे, इन मौलवियों को रहने दो, अपने कुछ कहो मत, पढ़ाने दो, वरना ये अगर नहीं हुए तो क्या होगा, वो मैं स्पेन में देख करके आया हूँ कि 800 साल जाहो जलाल के साथ हुकूमत करने के बाद भी वहाँ एक भी कलमा गोर नहीं। तो हकीकत तो ये है कि ये ईमान और इस्लाम को बाकी रहने वाले ये मकातिब के सिलसिले हैं। आपके ये मकतब, मुझे तो हैरत हुई आज जो है ये मुफ्ती अशफाक साहब ने जो है इसकी तफसील पेश की कि ये मकतब 2011 में जब इनके वह इसमें आया, ये हाफिज जावीद और इनके इसमें इंतज़ाम में, तो नाजरा के अंदर 285 बच्चे थे, आज 215 में, 4 साल के बाद नाजरा में 791 बच्चे हैं, और उस वक्त हिफ्ज में 27 थे, अब 152 बच्चे हैं। उस वक्त दर्जा आलिमियत था ही नहीं, आज दर्जा आलिमियत के अंदर 14 बच्चे हैं, और असातिज़ा उस वक्त 8 थे, आज 34 है। तो बहरहाल अजीब, ये 4 साल में इतनी बड़ी तरक्की, क्या कोई आदमी उसका अंदाजा? तो आप लोगों को इसकी तरफ तो जरा आंखें खोल कर तो देखो क्या हो रहा है, क्या क्या मेहनतें हो रही हैं, क्या कुर्बानियां दी जा रही हैं, इन कुर्बानियां देने वालों मेहनत करने वालों को पास आकर के धरा उनको तसल्ली तो दो, उनको तो बताओ कि भाई तुम्हारी कुछ मुश्किलात हो, तुम्हारे कुछ मसाइल हो तो आप हमारी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी तालीम का इंतजाम कर रहे हैं, आप जरा बतलाइए उन मसाइल को हम मिलजुल करके किस तरह हल करें। अब एक तादाद इतनी बड़ी तादाद अब जो हो गई तो उसकी वजह से इतने असातेजा 34 असातेजा की तनख्वाहों का इंतजाम और ये सब, तो हकीकत तो ये है कि ये अब तक यूं ही मुफ्त में होता रहा। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये भले अपनी इसकी वजह से जो है सैर चश्मी की वजह से इस तरह कुछ नहीं बोले, हमारे पास जब मसला आया तो हमने कहा कि और तालीम को उम्दा बनाने के लिए आपको चाहिए कि असातेज़ा की तनख्वाहों का मेयार ऊंचा करें। अब उसके लिए अगर मालियात के अंदर ज़रूरत है तो हम जो है अवलिया से दरख्वास्त, मैं कहा अवलिया को जमा करो, मैं आने के लिए तैयार हूँ, हजरत को दुआ दो, दोनों हजरात को दावत दो, मैंने ही मशवरा दिया कि ये ज़रूर होना चाहिए। तो हकीकत तो यह है कि ये सिलसिला बड़ा बाबरकत है, आप हजरात को खुद ही इसकी तरफ दिलचस्पी से हिस्सा लेना चाहिए था, और जो आप जितना भी इस राह में जो है सैर चश्मी के साथ खर्च करेंगे, बल्कि आप में जो साहिब हैसियत है वो यूँ कहें कि मैं अपने बच्चे की फीस भी भरूंगा और मोहल्ले के जो गरीब बच्चे हैं जिनके वालिदैन अपनी गुर्बत की वजह से, माली कमजोरी की वजह से अपना अपने बच्चे की फीस भरने की ताकत नहीं रहती, ऐसे 3 बच्चों की फीस भी मैं भरूंगा। आप मुंतजिमीन को कहिए कि 4 फीस मेरी तरफ से, ऐसे 3 बच्चे मेरे नाम में दाखिल करो, तब देखो क्या हाल होगा, इस मदरसे को अल्लाह वो तरक्की देंगे। आज देखो वहां अनवार के अंदर एक जमाना था कि आपके सूरत शहर के अंदर मकतबी तालीम शुरू में वहां मदरसा मुल्ला मस्जिद माशाल्लाह मौलाना मरहूम की वजह से उसमें खूब तरक्की हुई, और ये और उसके बाद वो चंपा मस्जिद का था वो भी अब मरहूम हो गया मदरसा, समझा क्या नहीं, और अब माशाल्लाह आपके मदरसे में वहां अनवार में आलिमियत का दर्जा शुरू किया। तो आज क्या हुआ, कितने बच्चे, मुझे तो हैरत हुई, मशवरा किया था, मैंने कहा अच्छा है बच्चों को स्कूल के मध्य के साथ कॉलेज के साथ ये आलिमियत, तो आज बहुत से बच्चे वो हैं जो इंजीनियर हैं और डिग्रियां भी ले रहे हैं और इधर आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने। एक बच्चा मुझे बताया कि वो आर्किटेक्ट भी है और मुफ्ती भी है, वो मेरी मुलाकात कराते, ऐसे बहुत सारे बच्चे, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह अकबर, देखिए ये शहर में ऐसा हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सब किया। एक जमाना था कि इसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे, आज इन दारों और इन मेहनतों की वजह से ये सब आसान हो गया है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस पर तवज्जो करें, और ये मौजू तो माशाल्लाह ऐसा बड़ा वसी है कि घंटों भी उसके लिए जो है अगर हम बात करें तो नाकाफ़ी है, और वक्त भी इतना नहीं है। हजरत मौलाना इंशाल्लाह अपने तजर्बात और जो है अपने गोया इसकी बुनियाद पर आपको ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपके हौसले भी बढ़ेंगे और आपको भी ये जज्बा पैदा होगा कि नहीं हमें भी इन मेहनतों में हिस्सा लेना चाहिए। आपके इस मोहल्ले की हालत में अगर तब्दीली आ जाए, आप तो जानते हैं कि लोग क्या है इस इलाके के मुतालिक क्या राय रखते हैं, इसके मुतालिक ये भी है आपके इल्म में है, तो आप इस मदरसे की इस तरक्की की वजह से यहाँ बसने वाले बच्चे अगर इल्म हासिल करेंगे, उनके अखलाक आला होंगे तो उसकी सूरत और शक्ल ही बदल जाएगी, तो इसकी तरफ आपको खास दिलचस्पी से हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। हज़रत मौलाना इंशाल्लाह इस मौजू पर जो है आपकी तसल्ली फरमाएंगे और अपने तजर्बात की बुनियाद पर ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपके हौसले बढ़ें। अल्लाह हम सबको आपकी बातें तवज्जो से सुनने की तौफीक अता फरमाएँ।